नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ओशो के ध्यान और प्रेम जगत में। इस बार का यह एपिसोड बच्चों और अभिभावकों को समर्पित है। आज और आगे आने वाले एपिसोड्स में बच्चों के विषय में ओशो की देशना से हम रूबरू होंगे।
Ah, 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 ah
बच्चों की स्कूल की छुट्टियों के दौरान ओशो धाम में बच्चों के ध्यान शिविर आयोजित किए जाते हैं। ओशो ने बच्चों को विकसित होने के लिए अपने क्रांतिकारी विजन दिए। कार्यक्रम की इन श्रृंखलाओं में हम ओशो के प्रवचनों में इस विजन को अच्छी तरह जानेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे।
सूत्र के पूर्व कुछ बातें समझ लें। मनुष्य के व्यवहार में और मनुष्य की व्यवस्था में स्वतंत्रता सूत्र है। जितने कम होंगे नियम, जितनी कम व्यवस्था करने की चेष्टा होगी, उतनी ही व्यवस्था आती है। जितने ज्यादा होंगे नियम, जितनी चेष्टा होगी व्यवस्था को आरोपित करने की, उतनी ही अराजकता पैदा होती। इसे हम ऐसा कहें, मनुष्य और मनुष्य के बीच जितनी अराजकता हो उतनी व्यवस्था होगी, और जितनी व्यवस्था हो उतनी अराजकता हो जाएगी। इसका कारण है क्योंकि जब भी कोई एक व्यक्ति दूसरे को व्यवस्था देता है तब उसके अहंकार को चोट पहुंचती है। छोटे से बच्चे तक को व्यवस्था देने में अहंकार को चोट पहुंचती है तो बड़े बच्चों की तो कहना ही क्या। छोटे से बच्चे को भी तुम कहो कि बैठ जाओ शांत होकर, तो तुम जो कहते हो वो महत्वपूर्ण नहीं मालूम पड़ता। छोटे बच्चे को पीड़ा मालूम पड़ती, वो पीड़ा यह है कि उसे बिठाया जा रहा है, उसे अपनी असहाय अवस्था मालूम पड़ती कि मेरे ऊपर अन्याय किया जा रहा है, आज मैं छोटा हूं तो मुझे दबाया जा रहा है। ये बच्चा बैठ भी जाए तो भी बड़े प्रतिशोध से भरा हुआ बैठेगा, और बैठने का तो कुछ भी मूल्य न था, प्रतिशोध का जहर जीवन भर पीछा करेगा। इसलिए बच्चे अपने माता पिता को कभी माफ नहीं कर पाते, असंभव है। नहीं माफ करने का कारण यह है कि इतनी व्यवस्था दी जाती है कि बच्चे के अहंकार को प्रतिपल चोट पहुंचती है, उसे लगता है जैसे उसका अपना कोई होना ही नहीं, दूसरों के इशारे सब कुछ है, जहां वे चलाएं चलो, जो वे बताएं देखो, जो वे करने को कहें करो। तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता का कोई सूत्र वे बचने नहीं देते, एक बोझ की भांति मालूम होता है ये व्यवस्था आरोपित किया जाना। ये बोझ इतना हो जा सकता है कि फिर बच्चा सारे ही बोझ को तोड़ दे और ठीक और गलत का हिसाब भी भूल जाए और हर चीज के विरोध में खड़े होने की प्रवृत्ति से भर जाए। इसलिए तो अक्सर सज्जन माता पिता के घर में सज्जन बच्चे पैदा नहीं हो पाते, क्योंकि सज्जन माता पिता बच्चों को सज्जन बनाने में इतनी शीघ्रता से लग जाते, उनकी चेष्टा का परिणाम दुर्जन का जन्म होता है। तो कभी कभी जुआड़ी शराबी के घर में अच्छा बच्चा पैदा हो जाए, लेकिन सज्जनों के घर में अच्छा बच्चा पैदा नहीं होता। जुआड़ी और शराबी के घर में कोई नियम तो है नहीं, जुआड़ी शराबी नियम बनाएगा भी कैसे? जुआड़ी शराबी खुद ही अपने को व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है, बच्चे को क्या व्यवस्था देगा? और एक अनूठी घटना घटती है और मनस्विद बड़ी चिंता में रहे कि ऐसा क्यों होता है कि बच्चा खुद अपनी व्यवस्था अपने हाथ में ले लेता है, ये देख के कि कोई व्यवस्था करने वाला नहीं, ये अनुभव करके कि मैं अंधेरे में खड़ा हूं, खुद ही संभलने लगता है, ये देख के कि माता पिता परिवार गलत रास्ते पर जा रहा है, इसे देखने में किसी बच्चे को अड़चन नहीं होती कि गलत क्या है, क्योंकि जहां से जीवन में दुख आता है वो गलत है, इसलिए कोई अनुभव की जरूरत नहीं। इस जांच को तो हम लेकर ही पैदा होते हैं कि जिससे दुख मिलता है वो गलत है। बच्चा रोज देखता है शराब दुख दे रही है, जुआ दुख दे रहा है, परिवार पीड़ा में जी रहा है, नरक में जी रहा है, सचेत हो जाता है, अपने को संभालने लगता है। जब कोई संभालने वाला नहीं होता तो बच्चा अपने को संभालता है। तुमने कभी देखा हो छोटा बच्चा गिर जाए तो पहले वो चारों तरफ देखता है, गिरने के बाद रोना एकदम शुरू नहीं कर देता, पहले वो देखता है कि कोई है भी, मां है पास, तो ये रोने में कोई सार है। अगर माँ पास नहीं हुई चारों तरफ देख के कपड़े झाड़ के अपने रास्ते पर चल देता, गिरने के कारण नहीं रोता, माँ की मौजूदगी के कारण रोता है। जब देखता है कोई संभालने वाला नहीं, उठाने वाला नहीं, कोई संवेदना प्रकट करने वाला नहीं, अपने पैरों पर चुपचाप खड़ा हो जाता, रोना किसके आगे, किसकी प्रतीक्षा करनी, कोई है नहीं उठाने वाला, खुद झाड़ देता है धूल को, उठ के खड़ा हो जाता है। ये बच्चा प्रौढ़ हो गया अकेला पाके, एक प्रौढ़ता इसमें आई कि रोना व्यर्थ है। लेकिन मां पास हो तो ये रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, क्योंकि संवेदना किसी से मिल सकती है, कोई फिक्र करेगा, कोई ध्यान देगा। इस बात को ठीक से समझने में कि जिन बच्चों को बहुत ध्यान दिया जाएगा, बहुत फिक्र की जाएगी, वे हमेशा निर्बल रह जाएंगे। वे ऐसे पौधे होंगे जो अपने कहीं जी ही ना सकेंगे, हॉट हाउस प्लांट, उनके लिए कांच की दीवार चाहिए, सूरज की रोशनी भी उन्हें मुरझाएगी, हवा का झोंका भी उन्हें मार डालेगा, जरा सी ज्यादा वर्षा और उनकी जड़ें उखड़ जाएंगी। उनके पास कोई जड़ें नहीं है, और कारण क्या है, कारण इतनी है कि उनकी अति से सुरक्षा की गई। अति से सुरक्षा, स्वयं को सुरक्षित करने की सारी क्षमता का नाश कर देती। तुम बच्चों को बचाना, लेकिन अति सुरक्षा मत देना। बचाना तो भी परोक्ष, सीधी व्यवस्था मत देना। तुम बच्चों के आसपास एक वातावरण की तरह होना, जंजीरों की तरह नहीं। एक हवा हो तुम्हारी उनके आसपास, जो दीवार नहीं बनती, लेकिन कारागृह न हो। अगर बच्चे को तुम ये भी कहना चाहो कि मत करो इसे, तो भी इस ढंग से कहना कि उसके अहंकार को चोट न पहुंचे। रास्ते हैं, निषेध को कहने के भी विधायक रास्ते, विधायक को भी कहने के निषेधात्मक रास्ते। अगर बच्चा आपके पास जा रहा हो, तो बजाय ये कहने के कि वहां मत जाओ, उसका ध्यान आकर्षित करना कि देखो बगीचे में कैसा सुंदर फूल खिला है, तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम उसे विधेय देना कि वो फूल की तरफ चला जाए, आग की तरफ मत जाओ, ये बात ही खतरनाक है, क्योंकि ये निमंत्रण बन जाएगी। तुम जब मौजूद न होगे तब बच्चा आग के पास जाना चाहेगा, क्योंकि निषेध किया गया है, और निषेध को तोड़ना जरूरी नहीं, तो बच्चे का अपना अहंकार कैसे निर्मित होगा, इसे तुम ठीक से समझ लो। अहंकार निर्मित होने के लिए निषेध को तोड़ना जरूरी है। जो जो कहा जाए मत करो, वो करना जरूरी है, नहीं तो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीख पाएगा। इसलिए तो तुम जो जो कहते हो मत करो, वही वही बच्चे करते हैं, और तुम परेशान हो तो सिर पीटते हो कि क्या मामला है, इतना समझा रहे हैं, इतना रोक रहे हैं। समझाने रोकने के कारण ही किया जा रहा है। निषेध की दीवार बनाई तुमने कि बगावत पैदा होती है। तुमने कहा धूम्रपान मत करना, शायद अभी बच्चे ने इसके पहले सोचा भी ना हो कि धूम्रपान करना। कौन बच्चा सोचता है, या कभी किसी को देखता भी करते हुए और अनुकरण कर लेता, कोई निषेध न होता तो एक ही बार बच्चा धूम्रपान करेगा, दोबारा नहीं, खुद ही अनुभव से छूट जाएगा, क्योंकि सिवाय आंसू आने के, खांसी आने के और परेशानी के कुछ होगा नहीं। बुद्धिमान पिता तो बच्चे को सिगरेट ला के दे देगा, क्योंकि आज नहीं कल किसी न किसी का अनुकरण तुम करोगे ही, तुम खुद ही अनुभव से जान लो। मैं कुछ कहता नहीं, तुम अनुभव से जान लो। अगर प्रीति कर लगे तो आगे बढ़ना, अगर अप्रीति कर लगे तो रुक जाना, लेकिन तुम ही निर्णायक हो, मैं निर्णायक नहीं। और अगर पिता ये कर सके तो बच्चे के जीवन में धूम्रपान का जो पहला आकर्षण था वो नष्ट कर दिया, और तब बच्चा दूसरों को धूम्रपान करके सिर्फ हंसेगा कि कैसे मूड। लेकिन तुमने कहा मत करना, रस पैदा हुआ। इंकार में बड़ा रस है। अब बच्चे के मन में एक ही बात घूमेगी, उसके सपने में एक ही बात घूमेगी कि कब मौका पा जाए कोई एकांत क्षण में धूम्रपान करके देख ले। और तुम्हारा जितना निषेध होगा उतना ही बच्चा धूम्रपान की पीड़ा भी झेल लेगा, लेकिन तुम्हारे निषेध को तोड़ कर रहेगा। तोड़कर ही तो उसको बल मिलेगा, तोड़कर ही तो वो भी अनुभव करेगा मैं भी कुछ, तुम ही सब कुछ नहीं हो। एक संघर्ष है जो पिता और बेटे में चलता है, एक संघर्ष है जो मां और बेटी में चलता है। वो संघर्ष बिल्कुल स्वाभाविक है, उस संघर्ष से ही तो बच्चा बड़ा होता है। इसे तुम ऐसा समझो, संघर्ष बड़े प्राथमिक क्षण से शुरू हो जाता है। मां के गर्भ में शुरू हो जाता है, इसलिए तो बच्चे के जन्म के समय इतनी पीड़ा होती है, क्योंकि बच्चा इंकार करता है बाहर आने से। वो जहां है सुख में, वो जकड़ता है अपने को, रोकता है अपने को। एक संघर्ष शुरू हो गया, एक कलह शुरू हो गई। ये कलह फिर जीवन भर जारी रहेगी। पिता और मां और उनके बच्चों के बीच या तो समझदारी का संगीत हो तो कलह को सृजनात्मक रूप दिया जा सकता है, अगर यह संगीत न हो। और ध्यान रखना, इसका जुम्मा बच्चे पर नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा तो अभी कुछ भी नहीं जानता है। इसका जुम्मा तो बड़ों पर होगा, और बड़ों ने अगर छोटी क्षुद्र बातों के ऊपर बड़ी सख्ती की तो ये बच्चा उनके हाथ से छूट जाए, फिर वो रोए चीखें चिल्लाएं, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। बच्चा इसमें आनंदित होगा कि तुम पीड़ित हो, क्योंकि इसका मतलब होता है बच्चा शक्तिशाली हो रहा, तुम्हें पीड़ित कर सकता है। तुम वो उसे पीड़ित नहीं कर सकते, वो भी पीड़ित कर सकता है। अब एक राजनीतिक दांव पेच बाप और बेटे के बीच चलेगा, जो बाप और बेटे के लिए सही है वही बहुत से आयामों में सही है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच भी वही सही है, शासक और शासित के बीच भी वही सही है। जहां जहां किसी को चलाना है, कोई दिशा देनी है, किसी मार्ग को पकड़ाना है, वहां वहां वही कठिनाई आएगी। लाओस से कहता है कम से कम नियम, न्यूनतम नियम, बस उतने ही नियम चाहिए जिनके बिना चल ही न सके। जिनके बिना चल सके वो नियम काट देना। दो व्यक्तियों के बीच का संबंध स्वतंत्रता पर आधारित हो, शासन पर नहीं। और मजा यही है कि तुम जितना किसी दूसरे को स्वतंत्र करोगे उतना ही वो तुमसे शासित होने को तत्पर और राजी हो जाता, क्योंकि अब तुम्हारा शासन उसके अहंकार को चोट नहीं पहुंचाता। अब तुम्हारा शासन मित्र है, अब तुम्हारा शासन शत्रु की भांति नहीं है। इसलिए जो भी तुम किसी को कहो वो इस भांति कहना कि वो सुझाव से ज्यादा ना हो, आदेश कभी ना बने, वही मिताचार है। लेकिन बाप की अपनी अकड़ है, वो सोचता बेटे को सुझाव क्या देना, सीधा आदेश आज्ञा, वहां भूल है। सुझाव से ज्यादा कुछ भी नहीं किया जा सकता, और सुझाव भी ऐसा होना चाहिए कि अगर तुम ठीक कुशल हो तो दूसरे को ऐसा लगेगा कि उसके भीतर से ही आया है। किसी ने अमेरिका के बहुत बड़े करोड़पति अरबपति एंड्रू कार्नेगी से पूछा कि तुम्हारे जीवन की सफलता का राज क्या है, तो एंड्रू कार्नेगी ने कहा मेरी सफलता का राज एक ही है और अब मैं बता सकता हूं क्योंकि अब मेरी मौत करीब है और मेरी यात्रा पूरी हो गई, और वो राज ये है कि मैं अपने से भी बुद्धिमान लोगों से काम लेता हूं और इस ढंग से काम लेता हूं कि उन सबको ये प्रतीत होती कि उनके सुझाव मैं मान रहा हूं, हालांकि वे सुझाव मेरे ही होते। तो एंड्रू कार्नेगी अपने साथियों को सहयोगियों को बुला लेता था, उन सबसे कहता था कोई समस्या है हल करनी है तो सब सुझाव दें। उसका सुझाव तो पक्का ही है, वो पहले अपना तय कर चुका है कि क्या करना, वो उसे रखे बैठा है भीतर, लेकिन सबसे सुझाव मांगेगा। फिर मौका देख के कुल सुझाव जो उसके भीतर के सुझाव के करीब पड़ता होगा उस सुझाव के चर्चा वो बहाने चर्चा शुरू करेगा और वो ऐसा प्रतीत करवाएगा कि तुम्हारे में से ही किसी का सुझाव उसने स्वीकार कर लिया है, लेकिन वो कभी ये एहसास न होने देना देगा कि मैंने कोई सुझाव दिया जिसे तुम्हें मानना पड़ा है। एंड्रू कार्नेगी के पास जिन लोगों ने भी काम किया उन सबका भी वही एहसास है कि उसने कभी कोई सुझाव नहीं दिया। बहुत कुशल आदमी होगा और ऐसा ही आदमी मानवीय जीवन को व्यवस्था देने में सफल हो पाता है। तुम दूसरे को आदेश भी दो तो ऐसे देना जैसे वो सुझाव है, और इस भांति देना कि मानने की कोई मजबूरी नहीं है, वो मानना चाहे तो माने, न मानना चाहे तो न माने। वो नहीं मानेगा तो तुम्हें कोई दुख होने वाला नहीं है, ये तुम साफ कर देना, क्योंकि न मान कर तुम्हें दुख देने की जो वृत्ति होती है वो तुम खुद ही काट देना। छोटा बच्चा नहीं मानना चाहता क्योंकि वो जानता नहीं मानेगा तो तुम परेशान पीड़ित होगे, तो वो भी तुमको पीड़ित कर सकता है, ये सत्य अनुभव होगी। तुम ये पहले ही जाहिर कर देना कि तू नहीं मानेगा तो कोई अड़चन नहीं, मैं दोनों तरह से राजी हूं, दोनों में मेरी खुशी, माने तो न माने तो तुमने दंश काट दिया, तुमने निषेध का जो रस था वो तोड़ दिया, तुमने जीवन व्यवस्था को विधायक बना दिया। सारी जीवन व्यवस्था निषेधात्मक है। यहूदियों के ईसाइयों के 10 आज्ञाएं, तुम अगर पश्चिम को समझने की कोशिश करो तो लाओस्य का सूत्र समझना बहुत आसान हो जाएगा। पश्चिम में बड़ी बगावत है, हर बात के खिलाफ बगावत है, नई पीढ़ी कुछ भी मानने को राजी नहीं है, कुछ भी, जीवन के छोटे छोटे नियम भी मानने को राजी नहीं, स्नान भी करने को राजी नहीं, गंदगी को आचरण बना लिया है, साफ सुथरा दिखना बुर्जुआ गए गुजरे लोगों की आदत है। तो हिप्पी है और हिप्पियों जैसा सारा वर्ग है पश्चिम में, जो स्नान नहीं करेगा, गंदा रहेगा, गंदे कपड़े पहनेगा, धोएगा नहीं। कारण है ईसाइयत ने बड़ा आग्रह किया पिछले 2000 साल में, ईसाइयत ने कहा कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड, स्वच्छता बस परमात्मा से नीचे है, स्वच्छता के ऊपर बस केवल परमात्मा है। इसका आग्रह इतना प्रगाढ़ हो गया कि हिप्पी पैदा हो गया, तो नई पीढ़ी ने कहा कि हमारे लिए तो दुर्गंध और स्वच्छता ही दिव्यता है। ईसाइयत ने 10 आज्ञाएं निर्धारित की है, चोरी मत करो, पर स्त्री को मत देखो, धोखा मत दो, लेकिन सभी नकारात्मक है। एक ईसाई पादरी क्रिसमस के पहले पोस्ट ऑफिस गया था। उसने कोई पार्सल किसी को भेंट भेज रहा था और उसमें लिखा ऊपर हैंडल विथ केयर। पोस्टमास्टर ने पूछा कि कुछ कांच इत्यादि का सामान है? उसने कहा कि नहीं, बाइबल भेज रहा हूं। उसने कहा कि बाइबल में क्या टूटने जैसा है? उसने कहा 10 आज्ञाएं। वो कांच से भी ज्यादा नाजुक है। असल में नहीं, नहीं और निषेध से ज्यादा नाजुक चीज जगत में दूसरी नहीं है। तुमने नहीं कहा कि तुमने आधार बना दिया तोड़ने का। तुमने किसी को भी कहा कि नहीं, कि तुमने उसको निमंत्रण दे दिया कि तोड़ो। उपनिषद में ऐसी एक भी आज्ञा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं उपनिषद जिन्होंने रचा वे बहुत बुद्धिमान लोग थे। उपनिषद में एक भी निषेधात्मक आज्ञा नहीं। उपनिषद यह नहीं कहता कि चोरी मत करो। उपनिषद कहता है दान दो, बांटो। उपनिषद यह नहीं कहता कि व्यभिचार मत करो। उपनिषद कहता है ब्रह्मचर्य को उपलब्ध करो। उपनिषद यह नहीं कहता कि संसार बुरा है छोड़ो। उपनिषद कहता है परमात्मा परम भोग खोजो। बात वही है, लेकिन जहां विधेय होता है वहां तुम्हें कोई कहे नहीं, वहीं तुम्हारे भीतर भी अहंकार मजबूत हो जाता है, वहीं तुम तोड़ने को तत्पर हो जाते हो, वहीं तुम्हारे अहंकार पर कोई आक्रमण कर रहा है। नहीं आक्रमक है अहंकार के लिए और अहंकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, उसे तोड़ के दिखलाएगा। इसे स्मरण रखना, मानवीय व्यवस्था में नहीं जितना कम बीच में आए उतना अच्छा। हां को बीच में आने दो, क्योंकि हां जोड़ता है नहीं तोड़ता है, और तुम्हारे सब नियम नहीं पर आधारित होते। हां पर करो उन्हें आधारित, और तब तुम पाओगे कि 50 नहीं पर आधारित नियम एक हां पर आधारित नियम में समाविष्ट हो जाते। इतने नियमों की जरूरत नहीं है। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि मुझे जीवन अपना सुधारना है तो मैं कौन कौन से नियमों का पालन करूं? तो संत अगस्तीन ने कहा अगर नियमों का पालन करने गया और ये पूछे न कि कौन कौन से, तो नियम हजार हैं, जिंदगी बहुत थोड़ी, तो तुझे मैं एक ही नियम बता देता हूं कि तू प्रेम कर। उस आदमी ने कहा इससे सब हो जाएगा? अगस्तीन ने कहा सब हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेम करेगा वो चोरी कैसे कर सकता, जो प्रेम करेगा वो हिंसा कैसे कर सकता, जो प्रेम करेगा वो किसी का अपमान कैसे कर सकता, जो प्रेम करेगा उसके जीवन में जो जो कांटे हैं वो अपने से झर जाएंगे, क्योंकि प्रेम केवल फूल को ही खिला सकता है, प्रेम में कोई कांटे नहीं है। जो प्रेम करता है वो क्रोध और घृणा और वैमनस्य प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकेगा? जो प्रेम करता है उसे तुमने कभी लोभ करते देखा? उनका कोई मेल ही नहीं होता। अगर लोभ करना हो तो प्रेम भूल के मत करना। अगर लोभ करना हो तो प्रेम की बात में ही मत पड़ना। इसलिए तो कृपण आदमी कभी प्रेम नहीं करता, कर ही नहीं सकता। कृपणता का प्रेम से कोई संबंध नहीं। लोभी धन इकट्ठा करता है, और प्रेम खतरनाक है, उसके लिए प्रेम से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रेम का मतलब है बांटो। इसलिए लोभी प्रेम की झंझट में कभी नहीं पड़ता, हालांकि वो भी सिद्धांत खोज लेता है, लोग बड़े कुशल हैं। वो कहता है राग से मैं दूर ही रहता हूं, कृपण अपने को वितराग समझता है, कृपण सहता क्या रखा है संबंधों में, ये तो वो कहता है लेकिन तिजोरी में रखता चला जाता है। धन ही उसका एकमात्र संबंध है, और जिसका धन से संबंध है उसका जीवन से कोई संबंध नहीं रह जाता। प्रेम तो जीवंत संबंध है, धन तो मृत वस्तु से संबंध है। धन से ज्यादा मरी हुई कोई चीज है? रुपये से ज्यादा मुर्दा कोई चीज तुम दुनिया में खोज सकते हो? पत्थर भी पड़ा पड़ा बढ़ता है, पत्थर भी फैलता है, सारा अस्तित्व जीवंत है, लेकिन रुपया तुम बिल्कुल मरा हुआ पाओगे, रुपये में कोई जीवन नहीं है। और जो आदमी रुपये को इकट्ठा करने में लग जाता है उसकी आत्मा भी मर जाती है, और प्रेम तो वहां खिलता है जहां आत्मा जीवंत होती। तो जो प्रेम करता है वो लोभ नहीं कर सकता, जो प्रेम करता है वो कृपण नहीं हो सकता, परिग्रह ही नहीं हो सकता। एक प्रेम हजार नहीं वाले नियमों को अकेला संभाल लेता है, एक हां इतना बड़ा आकाश है कि हजारों नीम के छोटे छोटे पौधे उसमें समाविष्ट हो जाते और बिना दंश के बिना कांटे के। तो अगस्तीन कहता है प्रेम कर सको तो काफी, प्रेम न कर सको तो फिर तुम्हें लंबी फेरिस्त नियमों की मैं बताऊं, वो उनके लिए है जो प्रेम नहीं कर सकते। सब धर्म शास्त्र सब आज्ञाएं उनके लिए है जो प्रेम नहीं कर सकते। जो प्रेम कर सकता है उसके लिए बड़े से बड़ा शास्त्र मिल गया, अब किसी और शास्त्र की कोई जरूरत नहीं। इसलिए तो जीसस कहते हैं कि प्रेम परमात्मा है, तुम कुछ मत करो सिर्फ प्रेम कर लो। प्रेम का सार सूत्र क्या है? कि जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम दूसरे के लिए करने लगो, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो तुम दूसरे के साथ मत करो। प्रेम का अर्थ यह है कि दूसरे को तुम अपने जैसा देखो, आत्मवत। एक व्यक्ति भी तुम्हें अपने जैसा दिखाई पड़ने लगे तो तुम्हारे जीवन में झरोखा खुल गया, फिर ये झरोखा बड़ा होता जाता है। एक ऐसी घड़ी आती है कि सारे अस्तित्व के साथ तुम ऐसे ही व्यवहार करते हो जैसे तुम अपने साथ करना चाहोगे, और जब तुम सारे अस्तित्व के साथ ऐसा व्यवहार करते हो जैसे अस्तित्व तुम्हारा ही फैलाव है तो सारा अस्तित्व भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करता है। तुम जो देते हो वही तुम पर लौट आता है। तुम थोड़ा सा प्रेम देते हो हजार गुना होकर तुम पर बरस जाता है। तुम थोड़ा सा मुस्कुराते हो सारा जगत तुम्हारे साथ मुस्कुराता है। कहावत है कि रो तो अकेले रोओगे, हंसो तो सारा अस्तित्व तुम्हारे साथ हंसता है। बड़ी ठीक कहावत है। रोने में कोई साथी नहीं है क्योंकि अस्तित्व रोना जानता ही नहीं, अस्तित्व केवल उत्सव जानता है, उसका कसूर भी नहीं। रो अकेले रहोगे, हंसो फूल पहाड़ पत्थर चांद तारे सभी तुम्हारे साथ तुम हंसते हुए पाओगे। रोने वाला अकेला रह जाता है, हंसने वाले के लिए सभी साथी हो जाते हैं, सारा अस्तित्व सम्मिलित हो जाता है। प्रेम तुम्हें हंसा देगा, प्रेम तुम्हें एक ऐसी मुस्कुराहट देगा जो बनी ही रहती, जो एक गहरी मिठास की तरह तुम्हारे रोए रोए में फैल जाती। प्रेम काफी नियम है और प्रेम नियम जैसा लगता ही नहीं। तुम बच्चों को प्रेम दो, नियम नहीं। तुम्हारा प्रेम उनके जीवन में सारे नियमों की आधारशिला रख देगा। तुम उन्हें सिद्धांत मत दो, सिद्धांत तो कूड़ा करकट है। तुम तो उन्हें हृदय की छांव दो, तुम तो उन्हें प्रेम का भाव दो। तुम इतना ही बच्चों को सिखा दो कि वे भी तुम जैसा प्रेम करने लगे। तुमने सब सिखा दिया, फिर तुम उन्हें छोड़ दे सकते हो इस विराट संसार में, उनसे कोई भूल न होगी। और तुम सब तरह के सिद्धांत उन्हें दे दो और सब शास्त्रों के सिर पर रख दो और उन्हें प्रेम मत दो। तुम्हारी आंख बचते ही तुम्हारे शास्त्रों को एक तरफ फेंक के लात मार के वे वहीं चले जाएंगे जहां जाने से तुमने उन्हें रोका था। तुम्हारे निषेध उनके चरित्र को रूपांतरित न करेंगे, तुम्हारा विधायक भाव। और जो दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है वही समाज और शासन का संबंध है। शासन ऐसे है जैसे पिता माता, प्रजा ऐसे है जैसे बच्चे। इसलिए तो हम राजा को पिता कहते थे पुराने दिनों में, चाहे राजा की उम्र कम भी हो तो भी वो पिता था और प्रजा उसकी संतान थी। इसके पीछे कारण है, कहने का कारण यही है कि जिसको भी शासन देना है उसे एक गहरे प्रेम के आत्मीय संबंध में बंध जाना जरूरी है।
घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो यूं कर ले। घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो यूं कर ले। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मामृत साधना अपने संपादकीय में लिखती हैं, मशहूर शायर निदा फाजली के ये शब्द सुनने में बड़े सुहाने लगते हैं और यथार्थ में उतने ही कठिन हैं। क्या सचमुच हमारे बच्चे इतनी निर्मलता से हंस सकते हैं कि उनकी हंसी से घर की सारी मलिनता दूर हो और वह मंदिर की तरह जगमगा उठे। क्या माँ बाप के दिल में बच्चे के लिए इतना सम्मान है कि वे अपनी सारी व्यस्तता, सारी परेशानियां छोड़कर बच्चे के पावन हृदय में आनंद का वह फूल खिला सकें, जो हंसी बनकर उसके होठों से, उसकी आंखों से और उसके अंग अंग से छलके। कविता एक बात है और यथार्थ दूसरी बात। माँ साधना लिखती हैं, यथार्थ यह है कि बच्चों के प्रति पूरी मनुष्य जाति जितनी अंधी है, जितनी मूर्छित है, उतनी शायद ही किसी और चीज के प्रति है। माँ बाप और बच्चों का रिश्ता सर्वाधिक अंधकार में घिरा हुआ रिश्ता है। इसके बारे में हम मानकर ही चलते हैं कि यह प्रेम का अटूट बंधन है। माँ बाप जीते हैं तो बच्चों के लिए, बल्कि बच्चों को पैदा करने के लिए ही हर लड़के और लड़की की परवरिश की जाती है। उनकी शिक्षा, संस्कार, विवाह, सब कुछ इसलिए कि किसी तरह वे अपने ही जैसे और उत्पादन पैदा कर सकें। जिनमें यह प्रजनन क्षमता ना हो, वे अपने आप को बड़े अभागे समझते हैं, जैसे उनके मनुष्य होने में कोई कमी है, वे कुछ आधे अधूरे हैं। माँ अमृत साधना आगे लिखती हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? बच्चा मानो हमारे हाथ में पड़ा हुआ एक गीली मिट्टी का लोंदा है। उसे हम मनचाहा आकार देने के लिए खींचतान करने लगते हैं। माँ एक तरफ खींच रही है, पिता दूसरी तरफ खींच रहे हैं। घर में और भी दादा दादी या चाचा मामा इत्यादि वर्ग के लोग हों तो वे कुछ और संस्कार डाल रहे हैं। स्कूल में शिक्षक कुछ और कारीगरी कर रहे हैं। हर कोई अपनी घुट्टी बनाकर बच्चों को पिला रहा है। कोई भी यह नहीं सोचता कि क्या बच्चा उसे पीना चाहता है या बच्चे की भी अपनी कोई मर्जी है। आज 21वीं सदी की दहलीज पर खड़ी मनुष्य जाति जीवन के हर क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टि का प्रयोग कर रही है। क्यों ना इस उपेक्षित विषय में भी हम थोड़े वैज्ञानिक चिंतन की रोशनी डालें और इस नई रोशनी में देखें, देखें तो सही कि बच्चों के साथ परिवार का जो रिश्ता है उसको लेकर हमारी मान्यताएं कितनी सही और कितनी गलत हैं। किसी घर में जैसे ही बच्चा पैदा होता है, घर के बड़े लोग खुशी से फूले नहीं समाते। यह खुशी क्यों है? अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने का एक बहाना मिल गया। हम सोचते हैं हम जो ना कर सके वह हमारे बच्चे करेंगे। माँ बाप खुद नहीं जी पाए इसलिए बच्चों की गर्दन कसकर पकड़ लेते हैं कि उनके द्वारा जी लेंगे। बच्चों पर माँ बाप की इतनी पकड़ होती है कि उसमें बच्चे को विकसित होने के लिए जो अवकाश चाहिए वह नहीं मिल पाता। नवजात शिशु एक फूल का पौधा है जिसे खुले आसमान की दरकार है। उसे अपने हिस्से की धूप और हवाएं चाहिए। सम्यक खाद, पानी और मिट्टी की जरूरत है। और यह सब करने के बाद खिलने के लिए भरपूर एकांत, और समय चाहिए, तभी वह अपनी संभावनाओं को साकार कर सकता है। आज का भक्ति गीत देवा प्रेमल व माँ आनंद ऋचा का गाया हुआ है। संगीत म्यूजिक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ओशो से लिया गया है। तो मित्रों, आगे के आने वाले कई एपिसोड्स में भी 21वीं सदी में बच्चे इसी के विषय में ओशो के विजन को समझेंगे और तब तक समझते रहेंगे जब तक यह हमारे जीवन में उतरने ना लगे। और इसी आशा के साथ कि इस नई रोशनी में बच्चों के साथ परिवार का जो रिश्ता है उसको हम नए सिरे से परिभाषित करें और खिलने दें नन्हे फूलों को अपने पूरे आनंद में बनाएं संसार को सुंदर और सुंदर और सुंदर। ओशो रेडियो की तरफ से ओशो को अहोभाव व आप सबको हमारा प्रेम नमस्ते धन्यवाद।
फिर मधुमास जगाना होगा, जीवन के उजड़े उपवन में फिर मधुमास जगाना होगा, प्राणों की उत्तप्त धरा पर फिर रसधार बहाना होगा। खरे अमोलक कंचन है हम, पर माटी के मूल बिके जग सागर के सरसज है हम, पर करदम में लिप्त दिखे हैं। खरे अमोलक कंचन है हम, पर माटी के मूल बिके हैं, जग सागर के सरसज है हम, पर करदम में लिप्त दिखे हैं। पाक नहीं जीवन बंसी में, सुर छेड़े हम जैसे चाहे, बहुत गालिए राग वरण के, अब जीवन के गाना होगा। जीवन के उजड़े उपवन में फिर मधुमास जगाना होगा, प्राणों की उत्तप्त धरा पर फिर रसधार बहाना। Thank you. चल चंद हो गए। हम अपने ही अहंकार के कारागृह में बंद हो गए। हम अनुपम गोविंद गीत हैं पर जग के चल चंद हो गए। हम अपने ही अहंकार के कारागृह में बंद हो गए। हमें देह के देवालय में करनी होगी प्राण प्रतिष्ठा। भावों का नैवेद्य चढ़ाकर झूठा दीप मनाना होगा। हमें देह के देवालय में करनी होगी प्राण प्रतिष्ठा। भावों का नैवेद्य चढ़ाकर झूठा दीप मनाना होगा। जीवन के उजड़े फिर मधुमास जगाना होगा। प्राणों की उत्तप्त धरा पर फिर रसधार बहाना होगा। अपने ही घर में है पर दुख सपनों में भटक गए हैं। हम तो हैं आकाश खुले पर गम के बादल लटक गए हैं। हम अपने ही घर में है पर दुख सपनों में भटक गए हैं। हम तो है आकाश खुले पर गम के बादल लटक गए हैं। अपने घट में राम बसे पर इच्छाओं के दास हुए हम। फिर जीवन के वृंदावन में मुरलीधर बन जाना होगा। अपने घट में राम बसे पर इच्छाओं के दास हुए हम। फिर जीवन के वृंदावन में मुरलीधर बन जाना। अपने घट में राम बसे।